शत्रुपा देवी तो जैसे अपना दिल खोलकर पारो के सामने रख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पारो उनके दिल के दर्द से अनजान थी। वो समझती थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, परिवार परिवार होता है। जिस तरह से शत्रुपा ने एक एक करके अपने सारे परिवार वालों को खो दिया है कि अब खुद के अकेले रह जाने का डर उसके अंदर इस तरह से समा चुका है कि वो विक्रम को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं पारो जानती थी कि उनका डर भी बिल्कुल सही है। भले ही विदेश में पढ़ा लिखा मॉडर्न कल्चर का अर्जुन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता था या फिर इन सब चीज़ों के बारे में जानता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने तो खुद उस चीज़ को अपने ऊपर गुजरते हुए देखा था। ये कैसे आंखों देखी हुई उस भयानक सच्चाई पर विश्वास नहीं करती? तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है सुचित्रा, ऐसा नहीं हो सकता। उस घटना को वैसे भी 15 से 16 साल बीत गए हैं, इन 15 सालों में तो उन चीज़ों का कोई जिक्र भी नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। जब सब कुछ सामान्य हो चुका है तो फिर तू आज क्यों उस चीज़ को पकड़ कर बैठी है? क्यों नहीं आगे बढ़ती तू? भूल जा पुरानी बातों को, आगे कदम बढ़ा दे। एक बार पारो ने अपने आप को मजबूत करके शत्रुपा देवी को उन अंधेरों से निकालना चाहा। पारो की बात सुनकर शत्रुपा देवी तीखे मुस्कुरा दी। तुझे क्या लगता है पारो, मैं आज तक उन्हीं गलियों में भटक रही हूँ? मैंने खुद को बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं की? नहीं पारो, मैंने शमशेर से वादा किया था कि मैं उन अंधेरी गलियों की मुसाफिर कभी नहीं बनूंगी और अपने बेटे को भी बनने नहीं दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। अभिमन्यु ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, मैं खुद अपने बेटे को भी नहीं रोक पाई। और कल रात का तू पूछ रही थी ना कि मैं काउच पर क्यों सोई थी? शत्रुपा देवी ने काउच की तरफ इशारा करते हुए पूछा। पारो ने हाँ में सर हिलाया। कल रात ये अंधेरे मुझे खुद अंधेरी डरावनी भयानक गलियों में लेकर गए थे। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। कल रात भी मैं उन्हीं अंधेरी गलियों में दफन हो जाती, लेकिन शमशेर, शमशेर ने मेरे आगे अपना हाथ बढ़ाया और मुझे अंधेरों से निकाला और खुद खुद हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं अंधेरों में दफन हो गए। कहते हुए शत्रुपा देवी की आंखों से दो बूंद आंसू छलक पड़े। पर ऐसा हुआ कैसे? पारो को अभी भी हैरानी थी। पर ऐसा हुआ कैसे? शत्रुपा देवी की बात सुनकर पारो को अभी भी हैरानी थी, जबकि शत्रुपा देवी इतनी मुश्किल में भी तीखे मुस्कुराते हुए मजबूती से खड़ी थी। शत्रुपा देवी की मुस्कुराहट से एक पल के लिए पारो भी उलझ गई थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब कुछ तो खत्म हो गया था ना? अभिमन्यु और उसकी दुल्हन की मौत के बाद कुलगुरु ने इतनी बड़ी पूजा करवाई थी, ये डरावने सपनों से लेकर उन भयानक चीज़ों का सारा सिलसिला थम गया था। उसके बाद से ये 15 साल तो हमारे शांति से ही बीते हैं। इन 15 सालों में तूने तो क्या इस पूरे महल में भी किसी ने भी कोई सपना नहीं देखा और ना ही कुछ हकीकत बनकर सामने आया, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? पारो ने हैरान होते हुए पूछा। सिलसिला थम गया था पारो, खत्म नहीं हुआ था। ये सिलसिला इसलिए थम गया था क्योंकि हमने विक्रम को यहाँ से इन सब चीज़ों से दूर कर दिया था, लेकिन सालों के बाद फिर से विक्रम के ही कारण उन सभी सिलसिलों की शुरुआत हो चुकी है। शत्रुपा देवी पारो की तरफ देखते हुए बोली। क्या, विक्रम के कारण? पर विक्रम ने क्या किया? वो बेचारा तो सात समंदर दूर बैठा हुआ है, उसे तो इन सब चीज़ों की जानकारी भी नहीं। पारो को इस तरह से शत्रुपा देवी का विक्रम को ब्लेम करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। भले ही शत्रुपा देवी विक्रम की सगी दादी थी, लेकिन पारो ने भी विक्रम को कम प्यार नहीं किया था। अपने इन्हीं हाथों से उसने शत्रुपा देवी के बेटे अभिमन्यु प्रताप सिंह बुंदेला और फिर विक्रम सिंह बुंदेला को भी पाला था। पता था कि तू उसी का फेवर करेगी, लेकिन ये बात मेरी बिल्कुल सच है। वो सात समंदर पार बैठे बैठे भी वो काम कर रहा है जो काम हम यहाँ इंडिया रहकर भी करना नहीं चाहते। पारो, उसने राजगढ़ मेडिसिटी प्रोजेक्ट के लिए काम लगाने के लिए जरूर सोचा होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इससे रिलेटेड फाइल वर्क में जरूर किया होगा जो कि अब तक मेरी जानकारी में नहीं है, वरना इस तरह से कुछ नहीं होता। शत्रुपा देवी हल्की गुस्से में बोली। पारो नासमझी में शत्रुपा देवी की बातें सुन रही थी। तू कहती थी ना कि ये लड़का अपने बाप का और दादा से अलग है? नहीं, ये उन्हीं बुंदेला का ही खून है और उनके जैसा ही एक नंबर का जिद्दी है। ये लड़का अपनी जिद में खुद को तो बर्बाद कर ही लेगा, लेकिन इस बार इसके बर्बाद होने के साथ साथ पूरा राजकर राजवंश भी खत्म हो जाएगा। इस बात को ये समझना ही नहीं चाहता। शत्रुपा देवी के चेहरे पर गुस्से, दुख, हताशा और छटपटाहट के सब कुछ जानते हुए भी कुछ करने का मन कर रहा था। एक ही सांस में बिना सोचे समझे इतना किसी के बारे में अनुमान लगा लेना सही नहीं होता। शुभ शुभ बोल शत्रुपा। शत्रुपा देवी की बात सुनकर पारो कुछ डर सी गई। मेरे शुभ और अशुभ बोलने से क्या होता है पारो? होना तो वही होगा जो इन लोगों ने सोच रखा है, और जब इस जिद्दी लड़के विक्रम ने सीधे बर्बादी का ही सोच रखा है तो बर्बादी ही होगी ना। आज इस बार बर्बादी को हम भी नहीं रोक सकेंगे, कोई भी नहीं रोक सकेगा।